सभी भाई बहनों को आज दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जब आती है तो अकेली नहीं आती है, उसके साथ पांच त्योहार इकट्ठे आते हैं। धनतेरस से आरंभ होता है और उसके पहले तो सभी सफाई आदि आरंभ कर देते हैं, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी का आवाहन करना हो तो वहां स्वच्छता तो जरूरी है। इसलिए साफ सफाई आदि करते फिर लक्ष्मी जी का आवाहन होता है। और धनतेरस को वास्तव में अगर देखा जाए तो साउथ के अंदर धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। धन्वंतरी माना ही आरोग्य, स्वास्थ्य से जो कनेक्टेड है। तो इसलिए साफ सफाई जहां होती है वहां आरोग्य भी वास करता है, वहां हेल्थ भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। क्योंकि अधिकतर बीमारी जो मनुष्य जीवन में होती है वो कहीं न कहीं अस्वच्छता के कारण उत्पन्न कीटाणुओं से होती है। तो साउथ में तो धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है और धन्वंतरी की पूजा विशेष करते हैं, आरोग्य का आवाहन घर परिवारों में करते हैं, लेकिन नॉर्थ में धनतेरस कहते हैं, धन का आवाहन करते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष कौन से धन का आवाहन किया जाता है, तो खाली स्थूल धन की बात नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ चरित्र का धन का आवाहन होता है घर परिवारों में। और विशेष कलयुग के अंदर जो लोगों के जीवन के चरित्र किस ओर जा रहा है हम सभी जानते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो देवताएं इतने सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी वाले हैं, लेकिन फिर भी जो कपड़े पहनते हैं तो पूरा ढका हुआ, कोई अंग उनका दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो आत्म अभिमानी है। वहां तो कोई क्रिमिनल आय की बात ही नहीं है, लेकिन इतना श्रेष्ठ चरित्र का धन जो संगम युग में बाबा हम बच्चों को देता है, उसी श्रेष्ठ धन की जो प्राप्ति है कि देवताएं चारित्रिक रूप से भी बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च माने गए हैं। लेकिन आज की दुनिया के अंदर देह अभिमान के कारण देह की नुमाइश होती है तो चारित्रिक धन जो है समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले तो चारित्रिक धन का आवाहन होता है, दूसरा है बौद्धिक धन, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान को कहां भरना है, बुद्धि रूपी कलश के अंदर भरना है, और तभी बौद्धिक रीति से देखो तो देवताओं को कभी कोई मंत्री रखने की भी आवश्यकता नहीं, इतने श्रेष्ठ समझदार है ना, क्योंकि उनके पास बौद्धिक धन संपूर्ण था। उसी के साथ साथ सद्गुणों का धन था, जीवन इतना सुंदर श्रेष्ठ व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हरेक के साथ का व्यवहार उनका बहुत सद्गुणों के आधार पर किया गया, तो सद्गुणों का धन है उनके पास। तभी तो बाबा कहते हैं कि द्वापर युग में आने के बाद भी आत्माएं इतने दुखी तो नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वहां फिर भी थोड़ा चरित्र रहता है, 50% ही सही लेकिन रहता तो है, वहां फिर भी सद्गुण है, वहां फिर भी बौद्धिक क्षमता भी व्यक्ति के अंदर है, लेकिन आज की दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार का धन न होने कारण अगर स्थूल धन आ भी जाता है तो उसका सदुपयोग करने की समझ बुद्धि नहीं है, और जहां सदुपयोग नहीं होता है तो क्या होता है, उसका तो नुकसान ही होता है। कि आज वो धन का दुरुपयोग किस तरह से होने लगा है कि चारों ओर लोग नकारात्मकता के आधार से उस स्थूल धन को भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे कहा, नॉर्थ में धन तेरस के रूप में मनाते हैं, फिर दूसरा है नरक चतुर्दशी, कि जब विशेष भूतों को भगाने की बात होती है तो बाबा ने कल भी मुरली में सुनाया कि कितने भूत मनुष्य के अंदर विराजमान है, और उन भूतों को भगाने के लिए आवश्यकता है आंतरिक शक्ति की। तो योग के द्वारा बाबा से हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। ज्ञान की समझ के साथ ज्ञान की शक्ति भी है, इसीलिए ज्ञान को हमेशा कहा जाता ज्ञान शक्ति है, ज्ञान रोशनी है। तो जहां ज्ञान की शक्ति हो, ज्ञान की रोशनी हो, वहां समझ के आधार से हम अपने जीवन की कमजोरियों को, छोटे से छोटी कमजोरियों को भी सहजता से दूर कर सकते हैं। तो नरक चतुर्दशी में या छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, तो छोटी दिवाली, देव दिवाली उसको कहा जाता है, देवताएं जब दिवाली मनाना शुरू करते हैं, और उसके बाद है दिवाली अमावस्या की रात जब संपूर्ण अंधकार होता है, ऐसे समय में चारों ओर दीपोत्सव प्रकट हो जाते हैं, सारे दीपक जगने लगते हैं, उसमें भी एक बड़ा दीपक होता है और बाकी सब मिट्टी के छोटे छोटे दीपक होते हैं। तो बड़ा दीपक दीपराज परमात्मा का प्रतीक है, और छोटे छोटे मिट्टी के दीपक यानी आत्मा, ये मिट्टी के शरीर में जो विराजमान है, उनकी ज्योति उस परम ज्योति परमात्मा से जगने लगती। तो दीपराज के साथ साथ दीप रानियों का कितना सुंदर दीपावली के रूप में या दीपमाला के रूप में गायन होता है। तो बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि बच्चे संगम युग का ही यादगार है जो भविष्य सारे कल्प में मनाया जाता है, या द्वापर के बाद तो विशेष त्योहार के रूप में उसको मनाया जाता है। सतयुग में भी प्रैक्टिकल चाहे कोरोनेशन के रूप में करेंगे, वहां तो सबकी ज्योति जगी हुई है, लेकिन यहाँ हर एक की ज्योति जैसे जग जाती है तो पूरी दीप माला तैयार हो जाती है। तो ऐसी दीपावली विशेष, और फिर जैसे उसके बाद का दिन है नया साल, कहीं मनाते हैं या कहीं पर गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा यानी प्रकृति को सतोप्रधान सात्विक बनाने का जो कार्य ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है मनसा सेवा के माध्यम से, बाबा कहते हैं तुम खाली आत्माएं पतित से पावन नहीं बनती हो, लेकिन तुम्हारे वाइब्रेशन से मनसा सेवा के द्वारा प्रकृति भी संपूर्ण सतोप्रधान बन जाती है। तो ऐसी प्रकृति जहां संपूर्ण सतोप्रधान बन जाए तो वो प्रकृति का भी गायन और पूजन होता है, चाहे गोवर्धन पूजा के रूप में ही। कितना उस समय गोवर्धन की पूजा करेंगे, गाय भैंसों की पूजा कर, गायों की पूजा विशेष करते हैं, बछड़ों की पूजा विशेष, यानी प्रकृति पशु पक्षी सब जैसे सात्विक सतो प्रधान स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए एक नया समय आरंभ हो गया, यही कहा जाएगा, नया युग आरंभ हो जाता है हमारे लिए। वो नव साल कहते हैं, लेकिन नव वर्ष के साथ साथ हमारा नव युग आरंभ होता है। और फिर आता है भैया दूज, जहां प्रकृति इतनी सुंदर हो, पशु पक्षी इतने सुंदर हो, सात्विक हो, तो वहां आत्माओं की जो दृष्टि वृत्ति है वो कैसी होगी। तो आत्माओं की दृष्टि वृत्ति भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ। बाबा की मुरली में आगे संडे की पढ़ रही थी तो उसमें बाबा ने यही कहा, दृष्टि वृत्ति और कृति तीनों ही पवित्र हो जाती है। तो पवित्र वृत्ति माना जहां वृत्ति के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना समाई हुई हो। पवित्र दृष्टि यानी जब भाई भाई की दृष्टि हो, या एक दूसरे को देखे तो फरिश्ता स्वरूप में देखे। और कृति पवित्र माना सबको सुख देना और सुख लेना, न दुख देना है न दुख लेना है, सबको सुख देना और सुख लेना। तो ऐसा भैया दूज हम सभी ब्राह्मण ही मना सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों की ये धारणा इतनी मजबूत की है रोज रोज कहते हुए कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मिक रूप में देख करके मुझ बाप को याद करो। तो ये अभ्यास ही हमें उस वृत्ति और दृष्टि को विकसित करने में मदद रूप हो जाता है। तो इसलिए कहा कि दीपावली जब आती है तो अपने साथ ये पांचों त्योहारों को ले आती है। तो सफाई के बाद फिर धन का आवाहन, और आवाहन के साथ साथ खाली लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ हमेशा नारायण को नहीं दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, गणेश जी को दिखाते हैं। अभी लक्ष्मी जी और गणेश जी का क्या कनेक्शन होगा? लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की पूजा होनी चाहिए, तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को क्यों दिखाया, उसकी पूजा होती है, उनका क्या कनेक्शन हुआ? ना वो उसका बच्चा है, वो तो पार्वती का बच्चा है ना? तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का क्या संबंध हुआ, कहेंगे कोई क्या कनेक्शन है लक्ष्मी और गणेश जी का? हाँ, सर्व गुणों से संपन्न, इसीलिए उसको दिखाया। सर्व गुणों से संपन्न तो सारे देवताएं हैं, कोई और देवता को भी दिखा देते थे, कुबेर को दिखा देते थे, कुबेर को भी नहीं दिखाया, धन का देवता तो वही दिखाया गया है। तो लक्ष्मी और गणेश जी का क्या संबंध हुआ? गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, है ना? तो धन का आवाहन जरूर हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो बुद्धि है वो सकारात्मक होनी जरूरी है। बुद्धि के देवता गणेश जी को, जो हर बात में यथार्थ फैसला देता है, ऐसी तेज परख शक्ति जिसके पास हो, इसलिए आंखें छोटी दिखाई कि बहुत तेज परख शक्ति और ज्ञान का सदुपयोग करना। तो इस तरह से मनुष्य के पास अगर धन आ जाए और बुद्धि ना हो तो क्या होगा, वो धन व्यक्ति को उल्टे रास्ते चढ़ा सकता है। इसलिए गणेश जी जिसको बुद्धि का देवता कहा जाता है और जिसकी तीव्र परख शक्ति हो, उसको साथ में रखना आवश्यक है। उसको साथ में रखते हुए जीवन में आगे बढ़े, यानी आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि में धारण किया हुआ होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर अष्ट शक्तियों को विकसित कर सके और उस अष्ट शक्ति में भी विशेष शक्ति जो परख शक्ति है, यथार्थ परखने की शक्ति व्यक्ति के अंदर आए तो श्री गणेश, वहां कोई भी कार्य आरंभ करो आप, श्री गणेश करो, तो वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, उन्नति को प्राप्त कराएगा। नहीं तो अगर यथार्थ बुद्धि न हो तो फिर वहां से लक्ष्मी इतनी चंचल मानी जाती है, तो लक्ष्मी जो चंचल है वो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है, मन अधोगति की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए गणेश जी को हमेशा साथ रखना, आध्यात्मिक ज्ञान युक्त बुद्धि से उसका प्रयोग करना और यथार्थ स्थान पर उसका प्रयोग करना, तब कहा कि फिर श्री गणेश करो तो आप जीवन के अंदर हमेशा उन्नति को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बुद्धि से ही धन को कंट्रोल करना होता है, नहीं तो जैसे कहा लक्ष्मी चंचल होती, अगर कंट्रोल नहीं किया तो अधोगति की ओर जरूर ले जाएगी। इसलिए गणेश जी को साथ रखना। और गणेश जी के दो पत्नियां दिखाई, रिद्धि और सिद्धि। बाबा तो हम बच्चों को मना करता है, रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। परसों की मुरली को याद करो, बाबा ने कहा यहाँ कोई छू मंत्र रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, लेकिन यहाँ है यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना, यानी सफलता मूर्त बनना। तो रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि सिद्धि, ये यथार्थता मानी जाती है। तो विधि और सिद्धि, जहां यथार्थ विधि से सिद्धि को प्राप्त किया जाए वो हमेशा सही होती है। और फिर उसके दो बच्चे दिखाए, कौन से, जो हमेशा उसको आगे रखा जाता, गणेश जी से भी आगे, कहीं पर भी स्वास्तिका का निशान लगाएंगे। और फिर शुभ लाभ है ना, तो गणेश जी के दो बच्चे दिखाते हैं शुभ और लाभ। तो जीवन के अंदर शुभ लाभ, यथार्थ विधि से सफलता को प्राप्त करना, बुद्धि से चलेंगे, बौद्धिक धन जिसके पास होगा वो विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हुए शुभ लाभ को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन शुभ लाभ जो प्राप्त करेंगे तो उसमें भी क्या करना है, तो लाभ का उल्टा करो, लाभ का उल्टा करो भला। जब दूसरों का भला करते जाएंगे, जितना भला होता जाएगा उतना ही शुभ लाभ अपने जीवन में भी शाश्वत रहेगा। अगर भला नहीं कर सके तो लाभ प्राप्त करके भी क्या फायदा। लाभ जब होता है तो लाभ से तो भला करना होता है ना, अगर भला ही नहीं किया तो वो लाभ प्राप्ति का भी फायदा क्या हुआ, फायदा ही नहीं। किसी को सुख न दे सके, इसलिए कहा ना सुख देना सुख, कृति कौन सी है, तो सुख देना सुख लेना। अगर किसी को सुख न दे सके हम, तो उस लाभ को भी फायदा क्या हुआ। सुख देना माना दुआएं कमाना, तो जितना दुआएं कमाते जाते हैं हम अपने जीवन के अंदर, किसी को, किसी का भला करते हुए लाभ, यथार्थ रूप में दुआओं का लाभ हमें जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का बहुत गहरा संबंध है। तब कहा कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा होती है। और इसलिए फिर वहां स्वास्तिका जरूर निकालते हैं। स्वास्थ्य का यानी अगर इस विधि से चले जीवन में तो सब सुअस्ति, सुअस्ति माना सब सही है, सब अच्छे से अच्छा ही है। तो बाबा जैसे कहते हैं हमेशा कि जो कुछ हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो इस विधि से आप नई दुनिया का भी श्री गणेश करिए, तो दीपावली उसी का यादगार त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा जहां प्राप्ति हो, संपन्नता हो, भाग्य हो, ये सब जहां इकट्ठे आ जाते, आंतरिक वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हो, तो जरूर है कि उसका बही खाता जब खोलेंगे तो कैसा होगा फिर। तो पुराने खाते समाप्त करो, अब तक जो हुआ चलो अज्ञानता के कारण हो गया, लेकिन अब तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, तो अब जो ज्ञान के आधार पर हम करेंगे तो उससे तो हमारा लाभ ही लाभ, आगे 21 जन्म तक हमारा खाता कैसा रहेगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। तो ऐसी दीपावली सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कि सदा बाबा हर एक को ऐसे ज्ञान धन से, बौद्धिक धन से, चारित्रिक धन से, सद्गुणों के धन से, हर एक प्रकार के खजाने से भरपूर रखे। जितना यहाँ आंतरिक भरपूरता होगी उतना भविष्य में भी क्या होगा, भरपूर ही भरपूर। बाबा तो कहते हैं ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, तो जितना ज्ञान धन यहाँ होगा उतना भविष्य में भी क्या हो जाएगा, धन धान्य से संपन्न, है ना। तो इसीलिए ऐसे धन धान्य से संपन्न आप सब रहो, यही हमारे दिल की दुआएं हैं, दिल की शुभ भावना शुभकामना आप सबके प्रति है। और ऐसी दीपावली सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाकी तो दीपावली जैसे आज सुबह जयंती दीदी ने सुनाया, हमारे यज्ञ के लिए खास मानी जाती है। क्यों खास कहा जाता है, क्योंकि यही यज्ञ स्थापना दिवस है। इसी दिन दीपावली के दिन में ही बाबा ने हैदराबाद से कराची में आकर के बोर्डिंग स्कूल को खोला था, वो भी दीपावली का समय था। और जो है फिर वहां पर जो तपस्या सबने की, बाबा ने अपनी सारी संपत्ति को जो समर्पित किया, स्वयं को भी जो समर्पित किया, वो भी दीपावली का दिन, और दादियों का समर्पण दिन भी दीपावली का दिन, और साथ ही साथ हमारी प्राण प्यारी बड़ी दादी जी के जीवन कहानी में तो यही हम सुनते आए कि दादी जी का अलौकिक जन्म भी दीपावली के दिन हुआ। दीपावली की छुट्टियों में ही दादी जी बाबा के यज्ञ में आए, जहां दादी जी को साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा के आगे मिचनू कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और फिर जैसे जयंती दीदी ने बताया कि लंदन के भी स्थापना दिवस दिवाली है, तो अमेरिका के भी स्थापना दिवस दिवाली है। तो ऐसे दीपावली के तो कई जैसे विशेष कार्य होते थे। यहाँ पर भी कभी भी दादी जी डेट देती थी, ये मकान का ओपनिंग, अच्छा दीपावली के दिन, दीपावली के दिन। तो कई मकानों की ओपनिंग दीपावली के दिन हुए हैं। तो इसलिए कहा कि दीपावली हम सबके लिए, यज्ञ के लिए बहुत खास खास माना गया है, और हम सभी आंतरिक खुशी का तो अनुभव करते ही है, अंदर में गर्व का अनुभव होता है। दिवाली आती है तो एक अलग प्रकार के वाइब्रेशन हम सबके लिए अनुभव कराता ही है। तो बाबा के घर में जो भी भाई बहने अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं विशेष दीपावली के निमित्त, तो आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। संगम युग पर जो भी चरित्र हुए हैं वही यादगार रूप में फिर द्वापर युग से त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। तो अभी हम उनका यथार्थ अर्थ जानते हैं और वो अलौकिक रीति से हम कैसे मनाएं, वो अभी उषा बहन ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो हम सभी दिवाली को उस आध्यात्मिक रूप से ही अनुभव करते हुए अपने आत्मा रूपी दीपक को सदा ही जलाए रखें और सारे विश्व में हम ज्ञान का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश हम फैलाते रहें और अपने आत्मदीप से हम अन्य आत्माओं के भी आत्मा रूपी दीपक को जगाते रहें, क्योंकि दीप से दीप जलते हैं। हमारी परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अभी कुछ ही समय में हमारे सभी वरिष्ठ दीदियां और भाई हमारे बीच उपस्थित होंगे और उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। शांति। आज हम सब दीपावली प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, लेकिन आज जो हम दिवाली मना रहे हैं वो बहुत सादगी से मना रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई सजावट नहीं की गई, क्योंकि हम सबको ज्ञात है कि हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे निर्वैर भाई जी जो बाबा के यज्ञ के अनमोल रतन रहे, अव्यक्त हुए हैं, और उनकी याद और उनकी अनुपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब हर वर्ष हमें अपने वरदानी बोल से प्रेरणा देते रहे, और आज भी अपने सूक्ष्म अव्यक्त रूप से हम उनकी शुभकामनाएं अवश्य प्राप्त करेंगे। और आज के दिन हम अपनी प्यारी दादी जी को भी नहीं भूल सकते, दादी प्रकाशमणि जी को, जिनके लिए ये दीपोत्सव विशेष सदा ही रहा, क्योंकि दादी जी का ये अलौकिक जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तो साथ साथ हमारी सब दादियां भी, उनकी भी सूक्ष्म उपस्थिति अनुभव करते हुए आज हम इस दिवाली के त्योहार को मनाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध कर रही हूँ हमारे अति आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब जी को कि दीपावली के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सबको दें। आपके लिए मैं कहूंगी, उमंग उत्साह से सदा रहते हो भरपूर, आलस से अलबेलापन है आपसे कोसों दूर, दृष्टि से शक्ति भरते, वाणी से करते ज्ञान दान, यज्ञ के आधार आप हैं बाबा के यज्ञ की शान। भाई साहब अपने प्रेरणादायक बोल से हम सभी को भरपूर करेंगे।
ओम शांति। जैसा कि उषा बहन जी ने विस्तार से बताया कि दीपावली का संगम युग से और बाबा के यज्ञ से डायरेक्ट और गहरा संबंध है, बाकी चीजें तो फिर स्मारक के रूप में, यादगार के रूप में मनाई जाती हैं। आत्माओं के दीपक जलाना या आत्मा रूपी दीपक जलाना, यही दीपराज शिव बाबा ने अपने बच्चों को कार्य दिया है, और प्यारे बाबा के सभी बच्चे जीवन में भी दिवाली मनाते हैं और दिवाली मनाकर ही जाते हैं। जैसे आज हम हमारे आदरणीय यज्ञ के यहाँ के आधार स्तंभ निर्वैर जी की बात कर रहे हैं, तो निर्वैर जी तो दिवाली मनाते रहे, दिवाली मनाकर ही गए, और अब भी हमारे साथ दिवाली मना रहे हैं। अर्थात उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी आत्माओं के दीपक जलाए, तो असली काम सच्ची आत्माओं की ज्योति जगाना ही है। वो ज्योति जगाते जगाते बाबा के पास चले गए। बाबा ने कहा फाइनली तो आपको भी ज्योति स्वरूप बनना है, पहले फरिश्ता स्वरूप बनना है फिर ज्योति स्वरूप बनना। अगर आप दिवाली की प्रथाओं को देखेंगे तो उसमें भी संगम दिखाई देता है। आज भी रस्मी तौर पर दिवाली के दिन जो आतिशबाजी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पटाखे जलते हैं और दूसरे फूल झड़ियां अनार हवाइयां आदि जलते हैं। तो पटाखे विनाश के द्योतक हैं और ये फूल झड़ियां हवाइयां इत्यादि खुशी के नई दुनिया के द्योतक हैं, और हवाइयां तो आप जानते हैं रॉकेट्स के द्योतक हैं। और बाबा ने भी दिवाली मुरली में यही कहा कि बच्चे इसमें आपके पुरुषार्थ और आपके प्रारब्ध दोनों का प्रतिबिंब है। पुरुषार्थ में आत्मस्वरूप बनना है और फाइनली आत्मा बनकर के परम धाम में जाना है, तो उसका यादगार दीपक जलाना है, दीपक से दीपक जलाना है। और यहाँ तक बाबा ने कहा कि ये कार्य अंतकाल में सतयुग के आद और कलयुग के अंत में होता है, इसलिए हर अवसर पर जो भी सेरेमनी होती है इनॉग्रेशन उसमें ये दीपक जलाने की प्रथा चली आती है, दीपक से दीपक जलाना अर्थात ज्योत से ज्योत जलाना। फिर बाबा कहते हैं कि जो इसकी प्रारब्ध है देवी देवता पद, उसका प्रतीक फिर श्री लक्ष्मी है कि देखो दिवाली पर ही ऐसा बाबा ने पुरुषार्थ कराया जो जन्म जन्मांतर के लिए श्री लक्ष्मी स्वरूप जो है अर्थात हमारी प्रारब्ध को प्राप्त होती है। उसमें उन्होंने श्री लक्ष्मी को संपन्नता का स्वरूप दिखाया है। बाबा ने भी कहा है कि धन जो होता है कई प्रकार का होता है, हमको तो पता है कि हमारा संकल्प भी धन है, समय भी धन है, हमारे दैवी गुण भी धन है इत्यादि इत्यादि, स्थूल धन भी है। फिर उसके साथ साथ जिसको कहते हैं नई दुनिया का आरंभ, तो नई दुनिया का आरंभ होता है इसलिए वो गणेश जी को दिखाते हैं, क्योंकि श्री गणेश अर्थात किसी चीज का शुरू करना तो श्री गणेश संगम पर ही होता है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश भी दिखाते हैं। और हम बाबा के सभी बच्चे जो कि नई दुनिया के आदमी आते हैं श्री गणेश का ही प्रतीक है। गणेश का अर्थ होता है नवीनता, हर चीज को शुरू आरंभ करना, तो हर चीज नई ही आरंभ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यो जो दिवाली की रस्में दुनिया में बनाई गई हैं कि नए वस्त्र पहनना, नए बर्तन लाना, घर में नई पुताई कराना इत्यादि इत्यादि, वो सिंबॉलिक हैं, नवीनता का ही प्रतीक है। वास्तव में बाबा कहते हैं जैसे बाबा को खुशी होती है देख करके, ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि हमारे ही यादगार आज तक भी चले आते हैं, चाहे कोई नए बर्तन में स्पून ही खरीद लेता है लेकिन कहता है मैंने कुछ नया लिया। इसी प्रकार से संगम पर बाबा ने हमको तीनों काल का ज्ञान दिया है, तीनों लोक का ज्ञान दिया है, तो हम बड़े आनंदित होते हैं। जैसे कहा जाता है कि विष्णु जी आनंदित हो रहे हैं छह सैया पर सोकर, देखो कैसे बाबा ने पहले रियल देवी देवता बनाए, नई दुनिया का आरंभ किया, लेकिन वो इतने श्रेष्ठ थे कि उनका यादगार, उनके यादगार जैसा कोई यादगार नहीं। जीवन काल में भी वो थे, द्वापर से लेकर उनकी मूर्तियों के रूप में यादगार रहा और आज तक भी यादगार चला आता है। बाबा ने हमें रिमाइंड कराया देखो देवी देवताओं की मूर्ति को भी कोई कलजी की मनुष्य को टच करना अलाउड नहीं है। उस एरिया में केवल ब्राह्मण ही जाते हैं। यद्यपि वो ब्राह्मण उन्होंने दूसरे बना दिए, भाव अर्थ यही है, इतने श्रेष्ठ कलजू के अंत में भी उनकी मूर्ति को भी कोई पतित टच नहीं करता। तो सार यही निकलता है, पतित पावन बाबा ने आत्माओं को पावन बनाया और पावनता और पवित्रता में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो हम सब भाई बहन मिलकर आज के दिन इस दीपावली को सारे चक्कर को घुमा करके बहुत ही आनंदित होकर इसको हम मना रहे हैं। अभी भोग भी लगेगा, बाबा देखिए हमको क्या कहते हैं। ओम शांति।
दीपावली खुशियों का हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन खुशियों का दिन है, हर दिन उमंग उल्लास का दिन है। फिर भी कहेंगे आज नए स्वर से भरकर फिर से ये दिवाली आई है, आगमन नए युग का करने एक नई गति लाई है। स्वर्णिम इतिहास यज्ञ का स्वयं में समेटे आई है, आज 79 वर्षों का इतिहास स्वयं ये गाता है, दिवाली से तो अपना बहुत पुराना नाता है। यज्ञ की शुरुआत ही हमारी दिवाली से हुई, यज्ञ में जो समर्पण हुआ सर्वप्रथम वो भी दिवाली के समय ही हुआ, तो पूरा इतिहास यज्ञ का दिवाली के साथ जुड़ा हुआ है। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ परम आदरणीय मुनि दीदी जी से, जो स्वयं बाबा और दादियों के द्वारा तराशी हुई अनमोल मूर्ति है, और उसके रिटर्न में आप यज्ञ को बहुत बखूबी संभाल रहे हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, हमें आपकी शुभकामनाएं मिले तो और क्या चाहिए। आदरणीय दादी जी भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, जोरदार करतल ध्वनि से हम दादी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आदरणीय मुनि दीदी जी हमें प्रेरणा दे, उसके पहले हम जो भी हमारा ये संगम युगी स्वराज्य दरबार है, इसमें जो भी हमारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और उनके गुलदस्ते से स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ सुधीर भाई को, और सभी को तिलक देंगी डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति। आज दीपावली का पावन पर्व, यज्ञ इतिहास का दिन है। बाबा ने यज्ञ स्थापना भी दीपावली पर की, हमारी सभी दादियों का दीपावली बर्थडे है, खास बड़ी दादी जी का हम दीपावली पर ही बर्थडे मनाते थे, तो यज्ञ के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन को आज हम थोड़ा सिंपल रीति से कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा काफी धामधूम से ही करते हैं। कारण तो आप सब जानते ही हो, तो आप सबको ऐसे विशेष दिन की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीपावली पर बाबा कहता है अपना अपना जो खाता है वो चेक करो, और जो भी कुछ आपके अंदर है, पुरानी बातें, पुराना खाता, किसी के प्रति कुछ ही बात है, सबको मन से मिटाकर और एक दो को एक दो से गले लगना है, और अपनी शुभ भावना शुभ कामना का ब्लेसिंग सबको देना है और सबसे लेना है। तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर पाएंगे। बाकी नहीं तो इस दिन पर तीनों कॉम्प्लेक्स के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस बार तीनों जगह अलग अलग ही भोग लगा है। ऊपर और ज्ञान सरोवर में तो सवेरे ही लग गया था, और हमारे पास यहाँ 12 बजे भोग लग रहा है, और बाबा बहुत विशेष संदेश हमारे लिए भेजेंगे, और अभी हम एक दीपक रखे हैं यहाँ जो मोहिनी दीदी जी उसको जलाएंगे, और बाबा के पास ये दीपक और वैरायटी भोग सब भेजेंगे। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।
हमारी अति प्रिय परम आदरणीय दादी जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। दादी जी के लिए मैं कहूंगी, आपके आने से बरसता है खुशियों का सावन, आपके आने से खिल उठता है सबका मन आंगन, उपस्थिति से ही आपकी वायुमंडल हो जाता है पावन। दादी जी, दीपावली के शुभ अवसर पर आपका कोटि कोटि अभिनंदन। फिर एक बार जोरदार कल्तर ध्वनि से हम दादी जी का अभिनंदन करते हैं, और दादी जी से वो वरदानों की, शक्तियों की सकाश उनकी दृष्टि से हम अनुभव करते हुए अभी आदरणीय मोहिनी दीदी जी हम सब की तरफ से दीपावली का दीप प्रज्वलित कर रही हैं, और फिर प्यारे बाबा को भोग लगाया जाएगा। तो हम सब दीपावली के निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और फिर बाबा का संदेश भी दीदी जी के द्वारा सुनेंगे। तो आदरणीय मोहिनी दीदी जी,
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
सतयुग में अब तुम्हें आना है।